एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जगदाताई, हे जगदाताई। हे जगदाताई, हे जगदाताई, हे जगदाताई।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे सम्मुख आते हैं। पिता, इस समय हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। हमारे मनों को खोल दे और तेरा आत्मा से चला, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता। उन्हें तेरा वचन से बहुत आयत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है आत्मिक उपहारों का आशय। प्यारो, पवित्र शास्त्र इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है कि पादरी सेवा करते रहे जबकि सामान्य सदस्यगण केवल बेंचों को गर्म करते हैं और आत्मिक पोषण दिए जाने की प्रतीक्षा करते रहे। पादरी और सामान्य सदस्यगण दोनों ही कलीसिया बनाते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा, जैसे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:9 में। वे साथ में कलीसिया की भलाई और उसकी समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें एक साथ काम करने के लिए बुलाया गया है। हर कोई अपने विशेष मसीह प्रदत्त उपहारों के अनुसार, उपहारों में भिन्नता का परिणाम विभिन्न सेवकाइयों या सेवाओं में होता है। सभी परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने और अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए अपनी गवाही में एकजुट होते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती 28:19-20 में और प्रकाशित वाक्य 14:6-12 में। पादरी की भूमिका क्या है? आध्यात्मिक उपहारों का सिद्धांत मंडली के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पादरी के कंधों पर रखता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, प्रचारकों, पादरियों और शिक्षकों को नियुक्त किया है। पादरियों को वह काम नहीं करना चाहिए जो कलीसिया से संबंधित है, इस प्रकार खुद को थका लेते हैं और दूसरों को अपना कर्तव्य करने से रोकते हैं। उन्हें सदस्यों को कलीसिया और समुदाय में श्रम करना सिखाना चाहिए। जिन पादरियों के पास प्रशिक्षण का उपहार नहीं है, वह पादरी सेवकाई से संबंधित नहीं है बल्कि परमेश्वर के दूसरे काम के हिस्से से संबंधित है। कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना की सफलता उसके पादरियों की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करती है कि वे सदस्यों को परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। आइए हम उपहार और विशेष कार्य के बारे में सीखें। परमेश्वर पूरी देह को लाभ पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक उपहार देता है, न कि केवल उन व्यक्तियों को जो उन्हें प्राप्त करते हैं। और जैसे प्राप्तकर्ता अपने लिए उपहार प्राप्त नहीं करता है, वैसे ही कलीसिया उपहारों का पूरा हिस्सा अपने लिए प्राप्त नहीं करती है। परमेश्वर कलीसिया समुदाय को उपहार इसलिए प्रदान करता है ताकि वह उसे उस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार कर सके जो उसने उसे सौंपा है। आध्यात्मिक उपहार अच्छी तरह से किए गए कार्य के लिए पुरस्कार नहीं है, वे कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए उपकरण हैं। आत्मा आमतौर पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक उपहारों के साथ संगत उपहार देता है, हालांकि केवल प्राकृतिक उपहार ही आध्यात्मिक उपहार नहीं है। नया जन्म ही एक व्यक्ति को आत्मा द्वारा सक्रिय करता है। हमें आध्यात्मिक उपहारों को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेना चाहिए। अनेकता में एकता एकरूपता नहीं है। कुछ मसीही हर दूसरे को अपने जैसा विश्वासी बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक मानवीय योजना है, परमेश्वर की नहीं। यह कि कलीसिया आध्यात्मिक उपहारों की विविधता के बावजूद एकजुट रहती है, उपहारों की पूरक प्रकृति की ओर इशारा करता है। यह इंगित करता है कि परमेश्वर की कलीसिया की प्रगति प्रत्येक विश्वासी पर निर्भर करती है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के भीतर सभी उपहार सेवाएं और संचालन इतिहास के कलीसिया द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण के कार्य में एक साथ जुड़े। यीशु मसीह मुख्य आधारशिला में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम पढ़ते हैं इसे इफिसियों 2:21 में। साक्षी देना उपहारों का उद्देश्य तब क्या है? विश्वासियों को विविधता में उपहार प्राप्त होते हैं। एक संकेत है कि प्रत्येक के पास एक व्यक्तिगत सेवकाई है। फिर भी प्रत्येक विश्वासी को अपने विश्वास के बारे में गवाही देने, विश्वासों को साझा करने और दूसरों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर प्रत्येक उपहार देता है, चाहे वह कुछ भी हो, उन्हें प्राप्त करने वाले को गवाही देने के लिए सक्षम करता है। आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने में विफलता होने पर क्या होगा? जो विश्वासी अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने से इनकार करते हैं, वे न केवल अपने उपहारों को नष्ट कर रहे हैं बल्कि अपने अनंत जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। प्रेमपूर्ण सरोकार में यीशु ने गंभीरता से चेतावनी दी कि वह सेवक जिसने अपने उपहार का उपयोग नहीं किया, वह एक दुष्ट और आलसी दास से कम नहीं था जिसने अनंत पुरस्कार को खो दिया था। पढ़ते हैं हम इसे मत्ती 25:26-30 में। विश्वासघाती दास ने स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया कि उसकी विफलता जानबूझकर और पूर्व नियोजित थी, इसलिए उसे अपनी विफलता के लिए जिम्मेदारी सहन करनी पड़ी। न्याय के महान अंतिम दिन में जो लोग साथ बहते रहे हैं, अवसरों को चकमा देते रहे हैं और जिम्मेदारियों से परहेज करते रहे हैं, उन्हें महान न्यायाधीश द्वारा कुकर्मी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हमें आध्यात्मिक उपहारों को खोजना है। सदस्यों को कलीसिया के विशेष कार्य में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए उन्हें अपने उपहारों को समझना चाहिए। उपहार एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं जो प्राप्तकर्ता को सेवा और भरपूर जीवन के आनंद की ओर निर्देशित करते हैं। यूहन्ना 10:10 के अनुसार जिस हद तक हम अपने उपहारों को पहचानने, विकसित करने और प्रयोग करने के लिए नहीं चुनते या केवल उपेक्षा करते हैं, कलीसिया जितनी हो सकती है उससे कम होगी, परमेश्वर की अपेक्षा से कम होगी। हमारे आध्यात्मिक उपहारों की खोज की प्रक्रिया को निम्नलिखित द्वारा विशेषता दी जानी चाहिए। यह है पहला, आध्यात्मिक तैयारी। प्रेरितों ने गंभीरता से योग्यता के लिए प्रार्थना की कि वे ऐसे शब्द बोल सके जो पापियों को मसीह की ओर ले जा सके। उन्होंने उन मतभेदों और सर्वोच्चता की इच्छाओं को दूर कर दिया जो उनके बीच में थी। पाप का अंगीकार और पश्चाताप उन्हें मसीह के साथ निकट संगति में ले आया। जो लोग आज मसीह को स्वीकार करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की तैयारी में इसी तरह के अनुभव की आवश्यकता है। आत्मा का बपतिस्मा एक बार की घटना नहीं है, हम इसे रोजाना अनुभव कर सकते हैं। हमें उस बपतिस्मे के लिए प्रभु से याचना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कलीसिया को गवाही देने और सुसमाचार की घोषणा करने की शक्ति देता है। ऐसा करने के लिए हमें लगातार अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए, पूरी तरह से मसीह में बने रहना चाहिए और अपने उपहारों को खोजने के लिए उससे ज्ञान मांगना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं याकूब 1:5 में कहता है, अगर ज्ञान की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांगो। दूसरा बात है, शास्त्रों का अध्ययन करें। नया नियम जो आध्यात्मिक उपहारों के बारे में सिखाता है, उसका हमारा प्रार्थनापूर्ण अध्ययन पवित्र आत्मा को हमारे मन को उस विशिष्ट सेवकाई से प्रभावित करने की अनुमति देता है जो उसके पास हमारे लिए है। यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा में उपयोग करने के लिए कम से कम एक उपहार दिया है। तीसरा, दिव्य दिशा निर्देश के लिए खुलापन। हमें आत्मा का उपयोग नहीं करना है, परंतु उसे हमारा उपयोग करना है, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को अपनी इच्छा और भलाई के लिए काम करता है। फिलिपियों 2:13 कहता है, परमेश्वर के विधान द्वारा प्रस्तुत किसी भी सेवा में काम करने के लिए तैयार होना एक विशेष अधिकार है। हमें परमेश्वर को हमारी सहायता से दूसरों के माध्यम से कार्य करने का अवसर देना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिले हमें कलीसिया की आवश्यकताओं के प्रति जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें नई चीजों की कोशिश करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रतिभा और अनुभव के बारे में हमसे मदद मांगने वालों को भी बेझिझक बताना चाहिए। चौथा है, देह द्वारा पुष्टि। चूंकि परमेश्वर इन उपहारों को अपनी कलीसिया के निर्माण के लिए देता है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे उपहारों की अंतिम पुष्टि मसीह की देह के न्याय से होगी, ना कि हमारी अपनी भावनाओं से। अक्सर दूसरों के उपहारों की तुलना में अपने स्वयं के उपहारों को पहचानना अधिक कठिन होता है। हमें ना केवल यह सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि दूसरों को हमारे उपहारों के बारे में हमें क्या कहना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों में परमेश्वर के उपहारों को पहचाने और उनकी पुष्टि करें। भाइयों, यह जानने से ज़्यादा रोमांचक और संतोषजनक कुछ नहीं है कि हम उस पद पर हैं या वह सेवकाएँ या सेवा कर रहे हैं जिसे विधान ने हमारे लिए ठहराया है। पवित्र आत्मा के माध्यम से मसीह ने हमें जो विशेष उपहार दिया है उसे उसकी सेवा में इस्तेमाल करना हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। मसीह अपने अनुग्रह के उपहारों को साझा करने के लिए तरसता है। आज हम उसके निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं और खोज सकते हैं कि आत्मा से भरे जीवन में उसके उपहार क्या कर सकते हैं। तो परमेश्वर हर युग में अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों को आध्यात्मिक उपहार प्रदान करता है, जिसे प्रत्येक सदस्य को कलीसिया और मानवता के सार्वजनिक हित के लिए प्रेमपूर्ण सेवकाई में इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा के माध्यम से दिए गए जो प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छा के अनुसार विभाजित करता है, उपहार कलीसिया द्वारा अपने दिव्य रूप से नियुक्त कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी क्षमताएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन उपहारों में लोगों की मदद और प्रोत्साहन के लिए विश्वास, उपचार, भविष्यवाणी, उद्घोषणा, शिक्षण, प्रशासन, सुलह, करुणा और आत्म बलिदान सेवा और दान पुण्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। कुछ सदस्यों को परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है और कलीसिया द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य जैसे पादरी संबंधी, धर्म प्रचार संबंधी, प्रेरितिक और शिक्षण सेवाओं के लिए आत्मा द्वारा संपन्न किया जाता है, जो विशेष रूप से सेवाओं को सेवा के लिए तैयार करने, आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए कलीसिया का निर्माण करने और परमेश्वर के विश्वास और ज्ञान में एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जब सदस्य इन आध्यात्मिक उपहारों को परमेश्वर के विविध अनुग्रह के वफादार भंडारियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कलीसिया झूठे सिद्धांत के विनाशकारी प्रभाव से सुरक्षित रहती है। परमेश्वर द्वारा किए गए विकास में वृद्धि होती है तथा विश्वास और प्रेम में दृढ़ होते हैं। है तो आइए हम अपने उपहारों को समझें, उसे पहचानें और उसे परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर के महिमा के लिए और लोगों की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। हम सबों को परमेश्वर ने उपहार दिए हैं, सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिए हैं, इससे हम जानें और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इसे सही उपयोग करें कि हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं और कलीसिया का भी उन्नति हो और इस तरह से हम सभी लोगों को यीशु मसीह के आने के दिन के लिए, दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। परमेश्वर हम सबों के साथ रहे और आप सबों को बहुतायत से आशीष देवें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। तू हमें बुलाया है, तू हमें आशीष दिया है, तू हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है, हमें आत्मिक वरदान दिया है पिता। इसे तू हमें पहचानने और सही इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि दे, तेरा पवित्र आत्मा का मदद दे, ताकि हम लोगों की सेवकाई कर सके और तेरा नाम का बड़ाई कर सके। इस तरह हम सब आज के प्यार पाए जा सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।